नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बेहद महत्वपूर्ण उद्बोधन पर चर्चा करने वाले हैं। इसका शीर्षक है कैसे हो आध्यात्मिक कायाकल्प।
जी,
तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने अंदर, अपनी सोच, अपने स्वभाव में एक गहरा, एक बुनियादी बदलाव कैसे ला सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद ये किसी चमत्कार से या सिर्फ पूजा पाठ से हो जाएगा, पर पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है।
बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे बाहरी क्रियाएं हैं ना, जप, ध्यान या कोई अनुष्ठान,
हाँ,
ये सब सहायक तो हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर जो असली कायाकल्प है, मतलब मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर पूरी तरह से नया बन जाना,
जी,
वो तो अपने दृष्टिकोण, अपनी सोच, अपने चरित्र और आदतों को बदलने से ही संभव है।
हाँ।
उसके बिना सिर्फ बाहरी कर्मकांडों से स्थायी परिवर्तन की उम्मीद करना वो ठीक नहीं।
और इसी बात को मुझे लगता है पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया है महामना मदन मोहन मालवीय जी के जीवन के एक अनुभव से।
हाँ, उनके कायाकल्प का उदाहरण दिया है।
उनके शारीरिक उपचार के 3 चरण थे।
हाँ।
और कमाल की बात यह है कि वही 3 चरण हमारे आध्यात्मिक या कह लें मानसिक कायाकल्प पर भी बिल्कुल वैसे ही लागू होते हैं।
जी, हूबहू।
तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो पहला कदम क्या था? वो था मल संशोधन।
मल संशोधन,
मालवीय जी के शारीरिक उपचार में जैसे पंचकर्म वगैरह से शरीर के अंदर की गंदगी, विषैले तत्व, वो सब निकाले गए थे।
हाँ, और अगर इसे आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो इसका मतलब है हमारे मन में, हमारी आदतों में जो पुरानी नुकसानदेह परतें जम गई हैं, जिन्हें पूज्य गुरुदेव कुसंस्कार कहते हैं, या पाप कह लीजिए, या बुरी आदतें।
हाँ,
उनको पहले पहचानना और फिर उन्हें निकालने के लिए पूरी हिम्मत से जुटना, एक संघर्ष करना, इसी प्रक्रिया को पूज्य गुरुदेव प्रायश्चित प्रणाली भी कहते हैं। मतलब अपनी गलतियों को, बुरी आदतों को मानना और फिर उनके असर को खत्म करने की कोशिश करना।
अच्छा,
जैसे किसी कपड़े को रंगना हो तो पहले उसका मैल धोना पड़ता है ना?
बिल्कुल।
बस वैसे ही मन को नए विचारों और अच्छाई से भरने से पहले पुरानी जो नकारात्मकता है उसे हटाना ही होगा।
ये सुनने में तो मतलब काफी सीधा लगता है, पर असल में अपने अंदर के स्मेल को पहचानना और फिर उसे निकालने के लिए सच में संघर्ष करना, ये कितना मुश्किल हो सकता है।
देखिए, ये सचमुच सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए बहुत ईमानदारी चाहिए, साहस चाहिए, अपनी कमियों को बिना किसी बहाने के देखना। और ये संघर्ष कई रूप ले सकता है। हो सकता है ये पुरानी आदतों को छोड़ने की रोज की लड़ाई हो, या अपने गुस्से या ईर्ष्या पर काबू पाने की कोशिश हो, या फिर अतीत की गलतियों के बोझ से मुक्त होने का प्रयास, पर ये पहला और सबसे जरूरी कदम है।
ठीक है, तो पहला कदम हुआ अंदर की सफाई, मल संशोधन। इसके बाद दूसरा चरण क्या था?
वो था एकांत सेवन।
एकांत सेवन, जी।
मालवीय जी को अपने उपचार के दौरान करीब 40 दिन एक झोपड़ी में बिल्कुल अकेले रहना पड़ा था।
हाँ,
और इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। ये है आत्मचिंतन के लिए एकांत।
अच्छा।
दुनिया की जो भागदौड़ है, शोर शराबा है, भटकाव है, उनसे कटकर शांति से अपने अंदर झांकने का मौका। ये सिर्फ अकेले बैठ जाना नहीं है, बल्कि अपने मन के साथ बैठना है, अपनी कमियों को समझना, भविष्य की दिशा तय करना, अपनी समस्याओं का हल खोजना। पूज्य गुरुदेव अक्सर शांति कुंज जैसे स्थानों की तुलना माँ के गर्भ से करते हैं, या कुम्हार के अवे से।
अवा मतलब जहाँ बर्तन पकाते हैं।
हाँ, वो भट्टी। जैसे गर्भ में शिशु या अवे में कच्चा बर्तन बिना किसी भारी दखल के चुपचाप विकसित होता है, पकता है।
जी,
वैसे ही साधक को एकांत में रहकर अपने अंदरूनी रूपांतरण पर, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर पूरा ध्यान देना होता है।
तो ये एकांत एक तरह से अपने आप से मिलने का, अपनी दिशा तय करने का और अंदर से मजबूत होने का एक जरूरी समय है।
बिल्कुल, ये वो शांत जगह है जहां बाहरी असर कम हो जाते हैं और हम अपनी अंतरात्मा की आवाज, उसे बेहतर सुन पाते हैं, अपने विचारों को सुलझा पाते हैं और नए संकल्प ले पाते हैं।
और फिर आता है तीसरा चरण, टॉनिक सेवन। शारीरिक कायाकल्प में तो मालवीय जी को शरीर को ताकत देने वाली पौष्टिक पदार्थ दिए गए थे।
जी, रसायन दिए गए थे।
हाँ, तो आध्यात्मिक कायाकल्प के लिए ये टॉनिक या शक्तिवर्धक तत्व क्या है?
बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आध्यात्मिक कायाकल्प के लिए ये टॉनिक है श्रेष्ठ और सकारात्मक विचारों को ग्रहण करना।
अच्छा।
ये हमें मिलता है सत्संग से, यानी अच्छे स्पिरिचुअली इवॉल्व लोगों के साथ से, स्वाध्याय से, यानी प्रेरणा देने वाली पुस्तकों के अध्ययन से, चिंतन मनन से, और सबसे महत्वपूर्ण परमात्मा से जुड़कर। और पूज्य गुरुदेव परमात्मा को हमारी अपनी जागृत अंतरात्मा या परम चेतना का ही रूप मानते हैं। मतलब अब तक जिन नकारात्मक विचारों, आदतों या लोगों के असर में थे, उनसे हटकर ऊंचे आदर्शों से, महान विभूतियों के जीवन से और सकारात्मक ऊर्जा से खुद को जोड़ना। पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि हमारी अपनी अंतरात्मा ही, जब वो अपने शुद्ध रूप में होती है, परमात्मा का ही अंश है।
ये जो सकारात्मक प्रभाव है या शक्तिवर्धक विचार है, ये कहाँ से मिल सकते हैं? क्या ये सिर्फ कुछ खास पुस्तकों या सत्संग तक ही सीमित है?
नहीं नहीं, ये कहीं से भी आ सकते हैं। अच्छी पुस्तकें तो हैं ही, प्रेरणादायक जीवनियां हैं, प्रकृति का साथ है, कला संगीत, सच्चे मित्रों की सलाह, अपने अंदर की आवाज पर ध्यान देना, ये सब आध्यात्मिक पोषण के स्रोत हो सकते हैं।
जी,
मुख्य बात यह है कि हम सक्रिय रूप से इन्हें खोजें और अपने जीवन में शामिल करें, बजाय इसके कि हम नकारात्मकता को हावी होने दें।
पूज्य गुरुदेव इस पूरी प्रक्रिया में एक बात पर बहुत जोर देते हैं कि सारा पुरुषार्थ, सारी मेहनत व्यक्ति को खुद करनी होगी, कोई दूसरा आकर चमत्कार नहीं करेगा।
हाँ,
पुरानी परतों को उखाड़ने के लिए लड़ना पड़ेगा।
ये बिल्कुल सही है, बदलाव की जिम्मेदारी तो हमारी अपनी ही है, कोई और हमारे लिए ये नहीं कर सकता। लेकिन
लेकिन
लेकिन पूज्य गुरुदेव ये आश्वासन भी देते हैं कि इस रास्ते पर साधक अकेला नहीं है।
अच्छा,
जैसे एक विद्यार्थी को पढ़ने के लिए माँ बाप का सहयोग मिलता है, शिक्षक का मार्गदर्शन मिलता है, स्कूल का माहौल मिलता है।
हाँ बिल्कुल,
ठीक वैसे ही इस आध्यात्मिक यात्रा में भी मार्गदर्शन उपलब्ध है, जिसे वे गुरु सत्ता कहते हैं, प्रेरणा के लिए वातावरण है और दैवीय सहायता भी है, जिसे वे माता का वात्सल्य कहते हैं। शांतिकुंज जैसे स्थान इसी सहयोगी भूमिका को निभाने का प्रयास करते हैं, पर जैसा पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हम थाली परोस सकते हैं पर चबाना और पचाना तो आपको ही पड़ेगा। तो सहयोग का लाभ उठाना वो साधक पर ही निर्भर करता है।
तो अगर हम संक्षेप में कहें तो आध्यात्मिक कायाकल्प यानी अपने अंदरूनी जगत का कायापलट करने के लिए तीन मुख्य कदम उठाने होंगे।
जी,
पहला, अपने मन की पुरानी गंदगी और नकारात्मकता को पहचान कर हटाना, यानी मल संशोधन।
हाँ।
दूसरा, दुनिया से थोड़ा कटकर अपने भीतर झांकने और दिशा तय करने के लिए एकांत खोजना, यानी एकांत सेवन।
बिल्कुल।
और तीसरा, सकारात्मक विचारों, आदर्शों और अपनी उच्चतम चेतना से जुड़कर खुद को पोषित करना, यानी शक्ति वर्धक तत्व सेवन या टॉनिक लेना।
एकदम सही, ये एक सचेत यात्रा है, खुद को बेहतर बनाने की एक ईमानदार कोशिश है, जिसमें मार्गदर्शन और सहायता मौजूद है, और इसका परिणाम वो अद्भुत हो सकता है।
क्या परिणाम?
एक पूरी तरह से नया, संतुलित और कहीं ज्यादा सार्थक जीवन। जैसा पूज्य गुरुदेव कहते हैं, पुरानी केंचुल यहीं रह जाए और आप एक नए मनुष्य बनकर आगे बढ़े।
वाकई ये एक बहुत गहरी और साथ ही बहुत व्यावहारिक दृष्टि है। जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने मन में छोड़ सकते हैं सोचने के लिए।
जी,
क्या हम ईमानदारी से देख पा रहे हैं कि हमारी वो पुरानी कैचुल आखिर है क्या जिसे उतार फेंकने की जरूरत है? और क्या हमारे जीवन में वो कुम्हार का अवा है, वो शांत कोना है जहां हम खुद को पकने और बदलने का मौका दे सकें?